भक्त्याभिहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजिवा पुत्रातिमय तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतुष्ट तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विघ्नं राधे तं नयमाम चरणं भागवत में हम लोगों ने कृष्ण के राम रूप का वर्णन किया। पहले कृष्ण के ही 12 रूप का, कृष्ण के ही नृसिंह रूप का, कृष्ण के ही जितने भी अवतार हैं ये कृष्ण ही का है। कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। चंद्र एक है, उसकी 15 कलाएं हैं, 16 कलाएं। एक ही चंद्र विभिन्न दिनों में विभिन्न अंश में दिखता है, इसलिए चंद्र अलग अलग नहीं है। उसका नाम अलग, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया का चांद, चतुर्थी का चांद, पूर्णिमा का चांद, ऐसे बदल जाता है, किंतु है एक ही चांद। चांद कहते हैं पूर्ण चांद को। ऐसे ही अवतार बहुत से हैं, किंतु अवतारी एक है, वो है कृष्ण चंद्र जी। अवतारी कहने से उसकी शक्ति, उसके परिकर सबको समझना चाहिए। कुछ लोग ये तर्क करते हैं, मुसलमानों में एक ही अल्लाह खुदा है, क्रिश्चियनिटी में एक ही क्राइस्ट है, सब जगह एक ही है। किंतु हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत से हैं, दुर्गा, काली, संतोषी मैया इत्यादि अवतारों में भी बहुत से अवतार हैं। कृष्ण है, राम है, कल्कि है, वामन है, पुराणों में कहीं कहीं पर शंकर जी को ही भगवान, कभी दुर्गा जी को ही सब शक्ति, सबकी माता, कभी गणेश जी को, कभी शंकर, कभी सूर्य की होगी उपासना की बात बतलाई गई। इसलिए साधारण व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, और विदेश जो हम लोगों के विरोधी हैं सनातन धर्म के, अपना अपना मत प्रचार करते हैं, वो लोग इसमें दोष दिखलाते हैं। ये भारतवर्ष में सनातन धर्मियों में बहुत से पूजा की, एक नहीं है, किंतु बात ऐसा नहीं, एक ही है, दो नहीं, एक ही है, वो है स्वयं कृष्ण। और उनके विविध अवतार किस लिए हैं? मनुष्य समाज में तरह तरह के अधिकारी व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे भगवान ने, कृष्ण ने, तरह तरह के अधिकारी लोगों के लिए तरह तरह के रूप धारण करते हैं। अत्यंत जो नास्तिक हैं, भगवान का रूप नहीं मानते, ठीक है, हमारा निराकार रूप है, उसी का ही भजन करो। जो जिस रूप में अभी माने, माने तो सही पहले से, इसलिए हमारे यहाँ पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चतुर्थी, पांचवी, छठवी, दसवीं, 11, 12 बोर्ड का, इसके बाद में 4 वर्ष का और कोर्स फिर इसके बाद में एमए पीएचडी डीलिट, ये तरह तरह के क्लास हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों में कोई क्लास नहीं, बस अल्लाह कहो और खुदा कहो और नहीं तो बस बेधर्मी। हमारे क्रिश्चियनिटी में भी कोई क्लास नहीं, किंतु हमारे यहाँ तरह तरह के क्लास हैं, जो एक क्लास में पढ़े फिर दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में। चल कोई तामसिक व्यक्ति है वो भी सनातन धर्म में है, वो भी किसी न किसी की पूजा करता है, वो भगवान के ही जाती है किसी न किसी रूप में। कोई अत्यंत राजसिक व्यक्ति है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम राजसिक जो देवता है उनकी पूजा करो। कोई सात्विक है तो ठीक है, तुम सात्विक ही करो, आरंभ तो करो कुछ। कोई निर्गुण वाले हैं, ठीक है निर्गुण निराकार है, ठीक है सगुण में है राम कृष्ण इत्यादि। इसलिए हमारे यहाँ क्लास है सनातन धर्म में। इसलिए बाहरी लोग ये दोष ढूंढते हैं कि ये बहुत से देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु नहीं, एक ही विभिन्न रूपों में दिखाया जाता है। एक ही चांद, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कलाएं ये दिखती है, किंतु एक ही चांद, वैसे एक ही कृष्ण सबके रूप में। देवता लोग भी उनकी विभूति है, गीता में बतलाया गया। इसलिए हमारे सनातन धर्म का भाव बहुत ऊंचा है, उस प्रेम को तो कोई छू ही नहीं सका। विदेशी लोग कैसे इनका प्रेम है। थोड़ी सी राम के चरित्र में थोड़ी सी झांकी देखिए। रामचंद्र विमान से लंका विजय कर सीता जी लक्ष्मण जी बंदर भालू सब जितने थे एक को नहीं छोड़ा, लाखों लाखों बंदर भालू सबको पुष्पक विमान में चढ़ाया। आजकल विमानों की कैपेसिटी अधिक से अधिक 500, इससे अधिक नहीं अधिक है, इससे की अधिक कश नहीं है। और वो दो आदमी बैठे तो आराम से जाए, 10 आदमी बैठे तो आराम से, 1,00,000 आदमी बैठे तो आराम से। कोई उसमें कंप्यूटर से नहीं देखना है, कंप्यूटर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो 1, 2, 3 इंजन उसमें है, 4, और वहां पर इंजन की कोई जरूरत नहीं। मन से कहो जी यहां चलना है, बस ठीक वहीं पर पहुंच। उसमें अपने आप मन से कहो, जैसे थोड़ी सी गर्मी चाहिए, थोड़ी सी ठंडक चाहिए, इतना आदमी का सीट चाहिए, इतने आदमी का सोने का सीट चाहिए, सब सुविधाएं उस विमान में थी। इसलिए लाखों बंदर भालू कपी सभी लोग उसमें चढ़ करके बड़े आराम के साथ में, एयर कंडीशन इत्यादि सभी उसमें। ऐसा विमान अभी तक तो नहीं बनाए हैं, कल्पना तो नहीं, वैसा होना भी कठिन है। चढ़ करके आए, अयोध्या के लिए रवाना हुए। बीच बीच में सीता जी जहां जहां ठहरी थी, रामचंद्र जी जहां जहां ठहरे थे वो सीता जी को दिखलाते हुए, रामेश्वर की स्थापना इत्यादि हुई थी उसको दिखलाते हुए, और सारे स्थानों को दिखलाते हुए नंदीग्राम में चित्रकूट में पहुंचे, और हनुमान जी को फिर उतार करके भेज दिया, जाओ भारत को खबर। इसके बाद में वहां आए, राम का राज्य तिलक हुआ। तिलक होने के बाद में बीतने लगा समय, करीब करीब 11,000 वर्ष तक राज्य किया, वन इत्यादि गमन को छोड़ करके 11,000 वर्ष तक। अब कुछ लीला करना चाहते थे, उस समय एक दिन उनके सीआईडी ने उनको खबर दिया कि राज्य में कुछ आपके विरोधी बातें हो रही हैं। आज सुना ये कोई धोबी अपनी स्त्री को शाम को लौटी जरा रात में बाहर से, तो उस धोबी ने उसके पति ने 1,00,000 उसे मारा का, जो हमारे घर में मत घुसना, मैं रामचंद्र छोड़े हूं जो दूसरों के घर में रही हुई सीता को और लेकर के रख लिया, मार करके निकाल दिया। कहीं से और भी खबर आई, फुसफुसाहट हो रही है कुछ कुछ राज्य में इधर उधर, ये रामचंद्र जी ने ये ठीक नहीं किया, ये सीता जो दूसरे के घर में थी और उसको लाया, चरित्र का कोई ठीक नहीं, ऐसी स्त्री को रखना उचित नहीं। रामचंद्र जी सुने, बड़े दुखी हुए। दुखी होने के बाद में लक्ष्मण जी को बुलाया, बोला ये सीता जी मुझसे कह रही थी जो मैं उन ऋषि आश्रमों में जाना चाहता जाती और उनको कपड़े और गहने और जो अलंकार इत्यादि है वहां की सन्यासिने जो हैं स्त्रियां महिलाएं हैं उनको मैं देना चाहता हूँ, उपहार में देना चाहती हूँ। तो ठीक है, उनको कल आज कह दो जो कल चलना है और उनको गंगा जी से उस पार वाल्मीकि आश्रम के पास में कहीं जा करके छोड़ देना और कह देना उनसे उतारने के बाद में ये राम ने सदा के लिए जीवन भर के लिए आपको प्रत्याग कर दिया। लक्ष्मण जी बोलते हैं मन ही मन में जितनी ऐसी बातें होती हैं वो हम ही को आदेश देते हैं, ऐसा कठोर आदेश। मैं जानता हूं कि सीता जी पवित्र हैं, मैया हैं, रावण उनका स्पर्श भी नहीं कर सका, यदि स्पर्श कर सका तो वो भी माया सीता की थी, असल सीता को स्पर्श नहीं किया। यदि सोना कोई छू दे तो अपवित्र होता है, तो सीता जी क्या सोना से भी गई बीती हैं? और इसको राम हमको आदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि फिर कोई उत्तर मत देना, मेरी सौगंध उत्तर मत देना, बस हमारा आदेश को पालो। कलेजे पर पत्थर रखकर सीता जी को कहा कि कल आप जाना चाहती थी वन में ऋषि की पत्नियों को कुछ अलंकार कपड़े के लिए, तो आप प्रस्तुत हो जाइए ले लीजिए और कल सवेरे हम लोग चलेंगे। सरजू में नौका से चलते हुए और गंगा जी में पहुंच करके वहां पार करके ऋषि महर्षियों की पत्नियों से मिल करके उन्हें तैयार ले गए। बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। बहुत दिनों के बाद में आज उनसे मिलने का समय मिला। नौका पर चढ़ी और चलते 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 उस पार में पहुंची, फिर गंगा यहां पर कौन घाट प्रयाग ही हम वही घाट पर पहुंचे और उसी के उस पार में वाल्मीकि जी का आश्रम था। उस नदी के तट पर, गंगा के तट पर पहुंचकर बोले, अत्यंत दुखी होकर के रोते रोते बोले, माताजी आपको राम ने आदेश दिया है, आप रावण के घर में थी इसलिए अब जीवन भर के लिए आपको त्याग किया है। एकदम सुनते ही एकदम बेहोश होकर के गिर पड़ी। ऐसा कठोर आदेश मैं कल्पना नहीं कर सकती। यदि ऐसी बात थी तो लंका से ही हमें क्यों ले आए, इतना दिन घर में रखा। रोने लगी, विलाप करने लगी। लक्ष्मण जी से कहा उन्होंने, देखो लक्ष्मण, तुम्हारे चरणों में मैंने कुछ अपराध किया इसलिए ये मेरी दुर्गति हुई, दो दो बार हमको पति ने प्रत्याग। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सुहाग क्या है, पति का प्रेम। यदि पति का प्रेम ही नहीं रहा तो उसका मरना बल्कि अच्छा है। मैं मर नहीं गई, क्यों नहीं मर रही, प्राण क्यों नहीं निकल रहे मैं नहीं जानती। मैंने चरणों में तो अपराध ये किया कि जब हमारी शादी हुई जनकपुर से हम आई अयोध्या में और प्रथम दिन राम के घर में पहुंची, जब हम दोनों का मिलन हुआ हमारे पति का और हमारा, बड़ी खुशी थी, चारों तरफ में खुशियां मनाई जा रही, लक्ष्मण जी वहां पर उपस्थित थे, तुम थे। मैंने लक्ष्मण जी से कहा, देवर तुम्हारी सेवा हो चुकी, अब मैं आई हूं जनकपुरी से विवाह करके, इसलिए अब इनकी सेवा का अधिकार मेरा है, तुम्हारा नहीं। जब भाभी आप आई एक दिन में ही, मैं जन्म से ही इनकी सेवा कर रहा और आप दो दिन भी नहीं हुआ, पहले दिन ही आप कह रही हैं कि अब तुम्हारा सेवा में अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है। ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं। मैं तो उनकी सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैंने कहा जैसे आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, अब आपका अधिकार नहीं है, आप तुरंत यहां से चले जाइए। लक्ष्मण जी ने राम से कहा, आप ठीक कह रहे हैं भैया जी, क्या मैं चला जाऊं? उन्होंने कहा जी मैं कैसे कहेंगे चले जाओ, और सीता को भी मैं कैसे मना करूं, वो धर्म के साथ में विवाह होने के पश्चात में आई है, तुम्हारा भी अधिकार है इनका भी अधिकार है, तो मैं इस अधिकार में निर्णय नहीं दे सकता। हमारे गुरु जी को मैं बुलाता हूं, वो जो निर्णय देंगे वो आप दोनों को मान्य होना चाहिए। उसी समय में वशिष्ठ जी को बुलाया गया, रात में, इतनी रात में मुझे बुलाया हटाए, कोई मामला पचीदा है। लौट करके वो भी आए, लोगों ने उनकी पूजा की और इसके बाद उनसे पूछा। रामचंद्र जी ने कहा ये सीता जी कहती हैं अब मेरा राम की सेवा में मेरा अधिकार है, और लक्ष्मण कहते हैं जन्म भर हमने सेवा की, ये दो दिन में आई और इसका अधिकार कैसे हो गया, मेरा अधिकार नहीं है, आप निर्णय दीजिए ये कौन अधिकारी है, मैं नहीं कर सकता, आप गुरु हैं विचार करके बतलाइए। सोच विचार करके बोले लक्ष्मण जी जन्म भर सेवा के बात तो ठीक है, किंतु विवाह के बाद में पत्नी का अधिकार हो जाता है उसकी सेवा का, इसलिए महल के अंदर में सीता जी का अधिकार रहेगा और इस महल के बाद में लक्ष्मण जी का अधिकार रहेगा, वो सेवा करेगा, किंतु पत्नी का ही अधिकार सब समय होता है, क्योंकि स्त्री वो चीज दे देती है, अपना सर्वस्व दे देती है, प्राण दे देती है, आत्मा देती है, शरीर देती है, जो किसी के लिए देना संभव पर नहीं है। माता से भी अधिक अधिकार जब तक है तब तक माता का अधिकार, और जब स्त्री आ जाएगी तो मैया वह अपना भी अधिकार किसको दे देगी, बहू को दे देगी, अब तुम्हारा अधिकार तुम सेवा करो। इसलिए मेरा यही निर्णय है कि यहां तो इस भवन में सीता जी का अधिकार रहेगा, बाहर में आप सेवा कर सकते हैं। बड़े दुखी हुए लक्ष्मण, चले गए वहां से, किंतु बड़े दुखी हो, इसलिए तुम्हारे चरण में अपराध किया, मैंने तुमको उस सेवा से वंचित किया। दूसरी बात और एक हुई, जिस समय रावण मारीच को लेकर दंडकारण्य में पहुंचा और उसको कहा तुम हिरण बन जाओ और तुम्हारे पास में ये दौड़ेंगे राम मारने के लिए और तुमको मारेंगे जरूर, उस समय तुम वहीं से हा लक्ष्मण कहना, जिसे ये लक्ष्मण जी को सीता जी भेज के पास, सीता जी के कहने से वो आ जाएंगे और अकेले हिरण्य पर सीता जी को मैं चुरा ले जाऊं, लक्ष्मण जी के रहते हुए मैं नहीं ले सकता, लक्ष्मण जी हमारा वध कर देंगे मैं जानता हूं, इसलिए उनको किसी प्रकार से हटाओ। मरीच आया सोने का हिरण बन करके, इतने फुदकता हुआ चलने लगा, सीता जी ने कहा वाह हिरण तो बड़ा अद्भुत है, ऐसा तो हिरण मैंने देखा नहीं, प्रियतम इसे पकड़ करके ले आइए, मैं कैकई मां को उपहार दूंगी, और यदि ऐसे पकड़ में न आया तो इसे मार करके भी लाए तो इसका जो मृग छाला हुआ वो भरत को देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपके बातों में बीच में बोल रहा हूं, ये हिरण टेढ़ नहीं है, जरूर कुछ माया है। रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, माया भी हो तो मैं देख लूंगा, जब ये कह रही है तो सीता जी को लिए हिरण लाना ही, मरा हुआ भी जीवित भी है, बस धनुष उठाया चले और उनसे बोले जब तक नहीं आता तब इस स्थान को मत छोड़ना लक्ष्मण, और सीता जी की रक्षा कर। चले गए। कुछ देर के बाद में उन्होंने बाण से मारा और बाण लगते ही वो राक्षस का रूप धारण कर लिया और जोर से राम के आवाज में ही बोला, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। सीता जी सुन करके, उन पर कोई विपत्ति पड़ी, लक्ष्मण यह जाओ, लक्ष्मण देवर जाओ और तुम्हारे भैया की रक्षा करो। क्या हुआ, हमारे भैया पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती, तुम निश्चिंत होकर के आप यहाँ रहिए, कोई चिंता मत कीजिए, कोई ऐसी विघ्न बाधा भूत पिशाच राक्षस देवता गंधर्व की नहीं है जो उनको कुछ कर सके, शांत होकर के बैठे रहिए। ये देव असुरों की माया है, मैं उसी समय कहा था, भैया ने मेरी बात नहीं सुनी। किंतु सीता जी ने कहा, तुम भरत का गुप्तचर है, भरत ने इसीलिए भेजा कि तुम हमें राम को मरवा करके, हमारे पति को, और तुम हमारे साथ में रहना चाहते हो, पति बनाना, तुम हमको अब हमारा पति बनना चाहता है, तुम ये कभी जीवन में नहीं होगा, मैं आग में जल मरूंगी किंतु पर पुरुषों का मैं मुख नहीं देखूंगी। अरे बेटियों जरा सुनो तो, बात मत करो, ए बेटियों बातचीत मत करो, जब यहां ही है तो एक मिनट के लिए सुनो, ठीक छोड़ सुनो, मन दे करके कैसे स्त्री को होना चाहिए, लड़कियों को कैसा होना चाहिए, पुरुष कैसा होना चाहिए, राम और सीता और ये लक्ष्मण इत्यादि से समझो सुनो, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा सुनने का। तो उन्होंने खूब कड़ी बातें कही, जल्दी से जाओ और नहीं तो मैं समझूंगी तू उनका ऐसा है, तुम्हारी बुरी नियत है। लक्ष्मण जी बोले, जो होना है सो होगा, मैं ऐसी कड़ी बात नहीं सह सकता, मैंने जीवन भर इनको मैया के रूप में देखा, इनका भी चेहरा भी नहीं देखा और हमको ऐसा करें, मालूम होता है कुछ गड़बड़ी का है। उनको प्रणाम किया सीता जी को और एक लाइन चारों तरफ में दे दी, भजन कुटी के चारों तरफ, उस कुटी रहने की कुटी के तरफ अपने धनुष से, और देख करके बोली, जैसे इसके बारे में मत जाना, और बड़े अफसोस के साथ में नहीं जाने से भी बार बार देखते हुए पीछे चले गए। इतने में राम उसको मार करके आ रहे हैं। अरे लक्ष्मण तू आ गया, तुमको मैंने क्या कहा था, इस दंडकारण्य में चारों तरफ असुर सब ऐसे हैं जो दूसरों का वेश बना लेते हैं, क्या क्या, ये तुम हिरण नहीं था, वो तो माया का बना था, वो तो मारिश नाम का असुर था, और तुम छोड़ करके चले आए, इसमें कुछ हमको शंका हुई है, जल्दी चलो। और इधर आए तो रावण क्या किया, त्रिदंडे वेश, जैसे हम लोग दंड लेते हैं और साधुओं का वेश, नंगा शरीर और त्रिदंड का वेश लेकर, भिक्षांग देही भिक्षांग देही, और फिर जोर से बोला भिक्षांग देही, ऐसे जोर से बोला जब कलेजा ढल जाए। सीता जी बाहर से देख रहे, पहले ऐसे नहीं कहा, पहले आने के लिए चेष्टा की, जो ही आए और लाइन पर पैर गए और वहीं से बिजली निकले, खड़ाऊं पहन करके जो लकड़ी पर भी नहीं असर करेगा, तो भी ऐसी बिजली निकलती थी जैसे एकदम उसको खाक कर देंगे, इसलिए पीछे हट गया, फिर नहीं आया, वहीं से जोर से करने लगा। जानता था जो स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, इसलिए, और ये लीला भी होनी थी, ये सब राम की इच्छा से हो रहा है, बस पैर रखे और आग निकले। थोड़ी देर के बाद में जोर से ऐसा किया, बोला जी यदि भिक्षा नहीं देती है तो तुम्हारा सर्वनाश हुआ, तुम्हारा पति मारा जाएगा, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पति मरने के लिए एकदम प्रस्तुत, अभी मरेगा। सीता जी डर गई, कोई भी बात हो यदि पति के नाम पर कोई कहे तो वो झुक जाती, ले वो झुक गई, कहा जी मैं भीतर में आकर के बंधे हुए की भिक्षा नहीं लेता, ये भिक्षा देना है तो बाहर आ जाओ, और नहीं तो नहीं, मैं जा रहा हूं अभी, तुमको अभी संपात दे करके जाऊंगा तो तुम्हारा पति मर जाए, और नहीं तो लेकर के दो। अंत में सीता जी ज्यों ही आई बाहर, थोड़ी सी आने की चेष्टा की और बस पकड़ करके लेकर के चला गया। मैंने तुम्हारी बात नहीं और तुमको गाली दी, क्या गाली दी, तुम ऐसा दुष्ट आदमी है, तुम हमसे हमको लेना चाहता है, तो ये हमने कहा इसी का फल है आज ये हो रहा है। और रोते रोते बेहोश हो गई नौका पर। लक्ष्मण जी उनके तरफ में देखा, उनके चरणों में प्रणाम करके वहां से लौट आए और ये रोने लगी। फिर जब होश में आई, वाल्मीकि जी के कुछ बच्चे थे छात्र ऋषियों के लड़के, दौड़ करके राम के पास में गए, बोले ये बड़ी सुंदरी महिला है, बहुत और अकेले डकर डकर करके रो रही है। उन्होंने ध्यान से देखा, ओ ये तो हमने वाल्मीकि अपने रामायण में लिख रखा है, ये ऐसा तो होना ही है। बस वहां पर गए, बोले पुत्री पुत्री उठो, अब तुम अपने घर में आई हो, मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं, तुम अपने को समझो जे मेरे ये पिताजी हैं, हमारे आश्रम में चलो, वहां बहुत सी ऋषियों की पत्नियां हैं, वो तुम्हारी सेवा करें। और उनको लेकर के आए और उनको तब ये दे दिया आदेश कि देखो ये पुत्री हमारी है, इनको अच्छी तरह से रखना, कोई कष्ट न हो। रहने लगी घर से ही, अयोध्या से ही उनका उनको किसको और उनको गर्व पहले से था, अयोध्या में रहते हुए उनको गर्व था। इसलिए कुछ दिनों के बाद में उनको पुत्र हुए तो लव और कुश धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर रामचंद्र की क्या दशा है, अपने पत्नी के वियोग में चटाई पर सोते राजभवन के अंदर, रात भर नींद नहीं आती, उनकी चिंता करते रहते, सीता सीता सीते सीते। इधर में अपने पति के विरह में सीता जी भी ऐसे ही, इनको कुछ सहायता मिलती थी, कभी वाल्मीकि जी आकर के आश्वासन देते, और दो पुत्र हो गए ना, इनको सिखाने में पढ़ाने में पालन पोषण करने में इनका समय कट जाता, और राम का समय कटते भी कटता। कुछ दिनों के बाद में राम का मन नहीं लगने लगा तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से, गुरु जी मैं कुछ यज्ञ करना चाहता हूं, आप कोई समय निकालिए जो मैं यज्ञ कर सकूं। उन्होंने कहा जे बेटे तुम यज्ञ नहीं करने कर सकते, तुम्हारा यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं हूं, इसलिए कि तुमने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया है, तो पत्नी ले आओ बुला लाओ तब तुम यज्ञ करो। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो यज्ञ भी नहीं हो सकता, फिर भी कोई उपाय निकालिए। हाँ एक उपाय और है, तुम्हारे पिताजी की 360 रानियां थी तो तुम भी राजा ही हो, तो और भी 1, 2, 4, 10 तुम्हारी जैसी इच्छा हो, संसार में ऐसी कौन नारी है लड़की है जो तुमसे शादी करना नहीं चाहेगी, तो तुम शादी करके फिर यज्ञ करो। ये भी नहीं हो सकता, सीता के अतिरिक्त मैं दूसरी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, एक बार फिर भी कोई उपाय निकालिए। तो फिर उपाय क्या होगा, तो नहीं हमको यज्ञ करना है, तो ठीक है एक बात करो, यज्ञ करने से पहले एक सोने का सीता बनाओ, मूर्ति बनाओ सोने की, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे, वो जीवित हो जाएगी, और फिर तुम यज्ञ उसके साथ में बैठ करके करना। हाँ ये बात मुझे मंजूर है। सोने की सीता बनाई गई और उसमें वशिष्ठ जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, और प्रतिष्ठा होने के साथ साथ में क्या हुआ, जीवित हो गई। आज के नास्तिक के नास्तिक लोग जिनको पूरा विश्वास नहीं होता है, वो मूर्तियों में काठ पत्थर लकड़ी सोना इत्यादि देखते हैं, ये देखते हैं कि बड़ी सुंदर है, ये मार्बल पत्थर की बनाई गई है, ये सोने की बनी है, ये जयपुर से बन करके आई है, कहां से बनी है, कौन बनाया है। ये नहीं समझते कि उसमें प्राण इच्छा शक्ति और सारी भगवान की शक्ति है, नहीं देखते। किंतु हमारी ठाकुर जी की जो मूर्तियां होती हैं वो बोलती हैं, चालती हैं, कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे पानी पिलाओ। अरे हमारे नाक में छेदे हुए हैं, इसमें वो पहना देना तो लवंग पहना देना, हमारे नाक कान में इधर है, इसमें कुंडल पहना दो, बड़ी भूख लगी है, हमको खिलाओ। हम लोगों के ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं। कोई भक्त कहता है के साथ में कहते हैं, ये चलो अपने पास में हमको ले चलो। मुझे इतने भारी मैं कैसे उठा सकता, हमारे पीछे पीछे चलो। तो कहते हैं जी हमको जरा पेट भर खिला दो तब हम चलेंगे। तो सवा शेर का पूरी या मालपुआ बना करके खिलाया गया। अच्छा तो पीछे मत देखना, तुम जहां पर पहुंच जाना तब देखना, बातचीत करते हैं। ऐसे हजारों ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसमें प्राण आ जाते हैं। जब वो प्राण प्रतिष्ठा करें, वशिष्ठ जैसे मंत्रवी ऋषि ऐसे उच्च कोटि के प्राण सीता के आ गए, वो बोलने लगेगी, चलने लगेगी। फिर उनके साथ में यज्ञ हुआ। यज्ञ कहाँ हुआ, क्या हो गया भाई, क्या बेकार कर, करना है एक बार करो याद कर। उनके साथ में बैठाया गया, नहीं चल रहा। तो फिर यज्ञ हुआ, सवेरे में यज्ञ होता था 12 बजे तक, इसके बाद में दोपहर को छुट्टी रहती यज्ञ के बाद में। और उस समय नाना प्रकार के पुराण शास्त्र ये सब सुनाए जाते थे, लोगों को प्रसाद दिया जाता और इस तरह से दोपहर का समय ऐसे बीतता था। ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ चल रहा है, सुनाई पड़ रहा है पीछे, तो ठीक है। हाँ तो ये पहले से व्यवस्था नहीं करते। तो इस प्रकार से कथा चलती। उसी बीच में ये यज्ञ बहुत दिनों तक होता रहा, ठीक नहीं चल रहा। तो फिर बदला क्यों नहीं पहले? फिर उन्होंने पूछा जब नाम, तो लड़के ने बड़े तेजी से उत्तर दिया, हमारा परिचय वाल्मीकि के हम शिष्य हैं और कोई भी हमारा परिचय नहीं। यदि कोई त्यागी हो जाता है, ब्रह्मचारी या सन्यासी हो जाता है, तो उसके गुरु का नाम पूछना चाहिए, उसके माता पिता का नाम नहीं। इसने अपने शास्त्र विरोधी प्रश्न किया। आप तो इतने बड़े भारी विद्वान हैं और ऐसा प्रश्न किया, इसलिए ब्रह्मचारियों का ये पूछना कि तुम्हारा कहाँ घर है, तुम्हारी मैया थी, तुमने शादी किया था, घर में क्या क्या था, ये सब नहीं पूछो। सन्यासी से मत पूछो, सन्यासी से यही अधिक से अधिक पूछा जा सकता है कि तुम्हारे गुरु कौन है। गुरु का ही परिचय है, गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही सर्वस्व समय हो जाता है, क्योंकि भगवान से संबंध उसका हो जाता है। किंतु आज का सन्यासी भी ऐसा ही है, सन्यास छोड़ करके फिर स्त्री पुरुष में आ जाता है, दो दो चार चार शादियां करता है, तो वो सन्यासी के लिए नहीं कहा गया, उन ब्रह्मचारियों के लिए नहीं कहा गया। दो दिन गुरु आश्रम में रह करके गुरु को छोड़ करके फिर संसार में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं। सुनकर के बड़े लज्जित हुए भरत जी, और फिर प्रश्न नहीं कर सके। और इसके बाद में सोने की थाल भरी हुई जो थी वो उनको उपहार देना चाहा। ये मुझे क्या काम है इससे, मैं अपने गुरु जी के पास में रहते हूँ, वहां पर केले आम अमरूद सब केले के और अमरूद के फल लगे हुए हैं, हम लोग ले लेते हैं। पास ही में गोमती नदी है, सरस्वती नदी, गंगा नदी, हम उससे चुल्लू से पानी भर लेते हैं, हमें क्या इससे जरूरत है। कपड़े की जरूरत हमको जब होती है तो कपड़े नहीं, हम तो केले के बलकल से बने हुए छाल से जो कपड़े बने हैं उसी से जो पहने हुए थे, हमें क्या ही इसकी जरूरत है। ये तो राजभवन में ही रहना चाहिए, आपके पास ही शोभा देता है, हमारे लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं है। जो ऐसे सन्यासी साधु होते हैं वो यथार्थ साधु होते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं रहती। सुनकर के और भी दंग रह गए, आराम से आकर के बोले ये तो बड़े बुद्धिमान शास्त्रज्ञ और उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, किंतु लगता है कि ये तुम्हारे बेटे ही जैसे हैं। इसके बाद में लौट गए, वो शाम हो गई, अब दूसरे दिन कथा हो गई, तो वो लौट गए। और आज कुछ ये बातों में कुछ उलझ जाने से कुछ शाम रात जैसी हो गई। जब घर में लौटे तो सीता जी दोनों के लिए प्रतीक्षा कर रही, आज बेटे नहीं आए, विलंब हो गया, क्यों हो गया। जब आए तो दोनों को देख करके बड़ी खुश हुई और अपने इधर और इधर दोनों को बैठा लिया। बेटे आज विलंब कैसे हो गया। ओ मैं आज राम नाम के कोई राजा हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनकी यज्ञशाला में गया और उनको अपने गुरु जी की जो कथा है उसको मैं बांच रहा था, कीर्तन कर रहा था, और उसमें मैंने एक अद्भुत चीज देखी। मैया क्या देखी, अद्भुत चीज देखी, ये एक सोने की मूर्ति थी। तुम यदि बैठ जाओ वो एक साथ में बैठ जाए तो ये पहचान में नहीं आएगी ये कौन है, तुम बोलती है वो बोलती नहीं थी। मैं तो देख करके आश्चर्य हो गया, ये राजा ने तुम्हारी मूर्ति वहां पर क्यों रखी है। ये सब जानते हैं किंतु इनको ये पता नहीं है, जैसे यही राम हमारे पिता हैं और उन्हीं राम की ये पत्नी है हमारी मैया, ये नहीं जान रहे, किंतु रामायण पढ़ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने खोल करके ये सब चीजें नहीं कही थी। सुनते ही सीता जी रोने लगी, बहुत दुख से आंखों में आंसू झर झर के, अरे मैया तू रो रही है, अपने वस्त्रों से उनका आंसू पोछा, मैया तू क्यों रो रही। मैया क्या बतलाए, ये यही हमारे पति हैं और हमको सारे जीवन के लिए छोड़ दिया, ये कैसे कहे। बातों में उलझा करके किसी प्रकार से सीता जी ने बतलाया नहीं कुछ और रोती रही। इसके बाद में शांत होकर के बच्चों को लाल पालन किया, रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन रामचंद्र जी का निमंत्रण आया वाल्मीकि जी के लिए, वाल्मीकि जी को मेरा दंडवत प्रणाम कहो और उनसे निवेदन करना कि मुझे ऐसा लगता है कि सीता जी उनके आश्रम में हैं, इसलिए कल इस सभा में पधारें और पधार करके सीता जी को भी ले आए, उनके बेटों को भी ले आए, और सीता जी को कहिए आप आदेश दीजिए कि वो अपनी पतिव्रता धर्म की सौगंध लेकर के बतलाएं मैं पवित्र हूं। यह सुनकर के वाल्मीकि जी ने सीता जी को बुलाया, कहे बेटी पति का आज्ञा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है, इसलिए हमारे साथ चलो और वहां चल करके देखें क्या, किस लिए बुलाया। सीता जी को लिया वही वनवासी वेश में, दोनों बच्चों को भी साथ लिया और वाल्मीकि जी आगे चले, उनके पीछे ऋषि पत्नियां और ऋषि लोग सब चले। रामचंद्र जी कि वो यज्ञ हो चुका था, अब सारी सभा बैठी थी, सारे बंदर भालू ऋषि महर्षि सब लोग बैठे थे। जब ये आ रही थी तो सब लोग देखने लगे, सब देख रहे ये क्या होता है। जब निकट आई तो वाल्मीकि जी ने कहा, ये मेरी पुत्री तुम्हारी पत्नी सीता जी है, आप क्या चाहते हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। रामचंद्र जी ने भरी सभा में बड़े आकुल कंठों में बोला, मैं जानता हूं कि तुम पवित्र हो, इसलिए मैं लंका से तुम्हें लाया, किंतु कुछ लोगों को संदेह था, इसलिए बाध्य होकर के लोक मर्यादा की रक्षा के लिए मैंने छोड़ा। क्या किया? मैंने नहीं छोड़ा, राजा ने छोड़ा रानी को, मैं राम ने तुमको सीता को नहीं छोड़ा, वो कभी अलग नहीं हो सकती। तुम अपनी इस पतिव्रता का सत्यता का कोई प्रमाण दो, जिसे सभी लोगों को बाध्य होकर के मानना पड़ेगा। ठीक है महाराज, दशरथ ने पहले कहा था, वायु ने कहा था, अग्नि ने साक्षी देकर कर कहा, दिशाओं ने कहा था, जो सीता जी पवित्र हैं, मैं जानता हूं, किंतु फिर भी तुम साधारण आदमी भी हैं, उनके लिए तुम बतलाओ जैसे तुम परम पवित्रता वैसे ही हो, और अभी भी आपको प्रमाण की जरूरत है, लोगों को भी प्रमाण की जरूरत है। ठीक है, जैसे मैंने अपने तन से मन से वचन से आपके अतिरिक्त दूसरों को नहीं जानती हूं, मन से भी स्पर्श नहीं किया हो, तो हे मेरी मैया पृथ्वी जी, आप मुझको अपनी गोदी में ले लें, पृथ्वी फट जाए आप आ जाइए। यदि सचमुच मैंने तन मन वचन से, हमारा मन कभी भी आपके अतिरिक्त कहीं नहीं गया हो, तो पृथ्वी जी फट जाए। तीन बार ऐसा कहा और पृथ्वी फट गई, सोने का सिंहासन पर चढ़ी हुई पृथ्वी देवी आई और दोनों हाथों से सीता जी को अपनी गोदी में बैठाया, और एक मिनट के अंदर में पृथ्वी फिर जुड़ गई, अंतर ध्यान हो गई सीता जी। सारी सभा एकटक दिख रही, राम ने कहा, मेरी सास हो पृथ्वी, जल्दी से सीता को लाओ, नहीं तो अभी धनुष बाण उठाता हूं, चूर्ण विचूर्ण कर दूंगा। वाल्मीकि जी ने कहा, बस हो गया, ये सब होना था हुआ है, सीता जी आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, कहां आपकी लीला समाप्त होने को है, जिस काम से आए थे सब काम हो गया, अब ये मेरा पूर्ण करके अब लवकुश को अब ये भी पढ़ाऊंगा, अभी तक नहीं पढ़ाया था, इसलिए आप चिंता मत करें, दोनों बच्चों को साथ लें और अयोध्या लौटिए, इन दोनों को राजगद्दी दे करके फिर अपने परम धाम में पधारिए। किसी तरह से उनको ढाढ़ बढ़ा करके फिर दोनों बेटों को ले आए, उनको भी राजगद्दी दी, भरत के बच्चों को भी राजगद्दी दी, और अंत में क्या किया, लक्ष्मण के भी भरत के शत्रुघ्न को, शत्रुघ्न जी को मथुरा का राज्य ब्रजभर का, और उनके दोनों बेटों को वहां दिया, लक्ष्मण जी को लक्ष्मणावती, अभी जो राजधानी है लखनऊ, ये लखनऊ लक्ष्मण जी के नाम पर है, उनके बेटों के लिए अलग अलग राज्य दिया, शत्रुघ्न जी के बेटे को भी मथुरा, और उनके भरत जी के बेटे को भरतपुर है मथुरा के पास में, भरतपुर के पास में उनको राजगद्दी दे करके सारे भारतवर्ष को 6 भागों में विभाग करके और उनको राज्य दिया। इस तरह से होने के बाद में सब अयोध्यापुरी के पशु पक्षी कीट पतंग सबको साथ लेकर के सरयू के किनारे गए, सब लोगों के लिए विमान आया और सबको साथ लेकर के अयोध्या सुनी हो गई, और फिर नाना प्रकार के जीवों से पीछे से भर, किंतु जो जो राम के साथ में एक दिन भी था सबको लेकर के, ये राम की कथा है, कैसे हृदय द्रावक है, पशु भी सुने तो उसका चित्त द्रवित हो जाता है, ऐसी राम की करुणामयी लीला है। इन करुणाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से भगवान लोगों के कान के माध्यम से हृदय में पहुंच करके हृदय को निर्मल करके भगवत भक्ति करा देते। एक दिन भी जिसने हरि कथा सुनी, एक दिन भी, आधों में पुनी आध, आधी की आधी घड़ी भी किसी ने भी हरि कथा सुनी सिद्ध चित्त से, उसका चित्त जरूर निर्मल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त संसार के दुख को दूर करने के लिए और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, इसको समझिए। राम की ऐसे ही करुणा की सफलीला है, उनका अवतार भी इसी प्रकार का है। तो जिस उनके जो अवतारी हैं कौन, कृष्ण जी हैं, उनकी कैसी कैसी लीलाएं होंगी, अद्भुत और मधुर, वो मधुर से भी मधुर, दूध ऐसा ही मीठा और उसको घना कर दो तब कैसा हो जाएगा, और उसमें थोड़ा सा शर्करा दे दो और उसमें कर्पूर थोड़ा सा दे दो तो वो कैसा रसाला बन जाएगा, दूध तो ऐसा ही मीठा किंतु वो फिर रस बन जाता है। और यदि रसगुल्ला उसका बना दो, वो रसगुल्ला उसके अंदर में सब जगह केवल सैचुरेटेड रहेगा, सब रस ही रस, दबाओ तो रस गिरेगा। तो ये कृष्ण की लीला ऐसी है। कैसी लीला, एक छोटी सी श्रीमद् भागवत में आधे श्लोक में केवल बतलाया गया, उस लीला को हमारे ऋषि महर्षियों ने जो व्याख्या की, शायद आप लोग नहीं सुना होगा, थोड़ी सी। और जब मधुर उनकी जो दामोदर लीला है और जो लीलाएं हैं वो कितनी मधुर होगी आप कल्पना नहीं कर सकती। एक छोटी सी उनकी कथा सुना रहे हैं, 12:30 बजे तक का समय है, ठीक है। देखो हैं, नहीं नहीं हमारी छुट्टी है क्या ना, एक छोटी सी कृष्ण की बड़ी मधुर कथा मैं सुना करके आज मैं अपनी कथा बंद होगा, फिर कल होगा ऐसा। किंतु हम लेंगे दक्षिणा, ऐसे नहीं पूरी दक्षिणा लेंगे, ये कथा जो सुना रहे हैं आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, यही दक्षिणा है, आपका चित्त द्रवित हो जाए और कृष्ण के चरणों में लग जाए, यही मेरी दक्षिणा है, और कुछ हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। आप सब सभी लोग भगवान की कथाओं में विश्वास करके और इसे सुनिए और अपने हृदय में रखिए, बीच बीच में चिंता कीजिए, आपकी सारी जितनी समस्याएं हैं वो सब कहां की कहां चली जाएगी और जीवन में आप लोग सुखी हो सकते हैं। डॉलर आपको सुखी नहीं बनाएगा ये समझिए, पति सुखी नहीं बना सकता, बेटा नहीं बना सकता, कोई भी बना नहीं सकता। आपके पूर्वजों ने देखा और अभी भी देख रहे हैं और भी पीछे से, आज तक इस जगत में जन्म लेकर के कोई भी सुखी नहीं हुआ यदि भगवान का भजन नहीं किया। इसलिए सब कुछ कीजिए किंतु यह भावना लेकर के भगवान मेरे हैं, मैं उनका या उनकी हूं, और भगवान का भजन कीजिए, विशेष करके कृष्ण को स्वयं भगवान मान करके, राम इत्यादि को भगवान मान करके, राम को विशेष करके अवतार में ये दो ही श्रेष्ठ है। नृसिंह जी भी हैं तो उनकी कोई रसमयी लीला नहीं, वो तो भक्तों की रक्षा की लीला है। कृष्ण का जन्म हुआ, अब वो 2.5 वर्ष के हो गए हैं, 2.5 वर्ष के अब हो चुके हैं, अब अपने घुटनों पर चलने लगे हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर, कभी दौड़ते हैं, और जब रास्ते के पास में जब चौखट पर पहुंचते हैं तो उधर से देखते हैं कोई आ रहा है जा रहा है, बस दौड़ करके फिर से डरते हुए मैया की गोदी में आ जाते हैं, कभी तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। मैया बड़ी प्रसन्न है, जब से ये बेटे हुए हैं मैया को चैन नहीं, 2 मैया हैं 2 लड़के हैं, कभी कभी यशोदा मैया विशेष काम के लिए रोहिणी को भार दे करके दोनों बच्चों को सौंप करके जाती हैं, और वो अकेले दोनों बच्चों को ठीक से रख नहीं पाती, इतने चंचल हैं, बहुत चंचल, चंचलता उनकी बढ़ती गई। एक दिन मथुरा की कोई कुंजड़िन, कुंजड़िन जानती हो, ये भी हम लोगों की तरफ फल विक्रय करने वाली, क्या कहेंगे, फल वाली, फल बेचने वाली। हम लोगों के देश में कोई वो शुद्ध निम्न जाति की होती हैं, सिर पर लेकर के टोकरी उसमें भर लेती हैं आम अमरूद केले नाशपाती सब तरह तरह की चीजें, और गांव से अनाज उसके बदले में डेढ़ा दुगुना या कुछ पैसे लेकर के उनको दे करके बेच करके आती हैं और उससे उनका जीवन चलता है। उसने कृष्ण की रूप माधुरी की छटाएं सुनी और सुन करके बड़ी आकर्षित हुई। मैं नंद जी के लाला को मैं देखना चाहती हूँ, सब लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं और मैं जाती हूँ किंतु अभी तक देखा नहीं। संकल्प किया जैसे आज मैं देखूं दर्शन को। घर के भीतर मैं नहीं जाती थी, दरवाजे तक जाएगी। तो आज फल लो फल लो फल लो के करके नंद के भवन की चारों तरफ से परिक्रमा कर रही और फल लो फल लो, और ऐसे तन्मय हो गई, वो फल तो गया दूर और क्या गया, चिंतन करते करते गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। सभी लोग बोलो गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद लो माधव लो दामोदर लो। एकदम तन्मय हो गई, भूल गई फल का कारण, हाथ भी वहां से हट गए और इस प्रकार से करके गोविंद लो माधव लो दामोदर लो कहने लग गई। अभ्यास के वस्त्र वो टोकरी वहीं पर पड़ी है, कभी इधर भी करती है उधर भी करती है किंतु बैलेंस्ड उसका ठीक है इसलिए वो गिरती नहीं। अंत में थक करके बैठ गई, आज दर्शन करके जाना है। कभी कभी कृष्ण उसको सोते मिलते थे, कभी कुछ, किंतु आज तो हम हट कर लिया, आज तो हम जब तक दर्शन नहीं पाएंगे लौटेंगी नहीं। इसलिए टोकरी को उतार दिया, नंद भवन के आंगन के दरवाजे के सामने में बैठ गई और वहीं से गोविंद माधव लो करने लगी। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण की नींद खुली मैया की गोद से, और नंगे अढ़ाई वर्ष हमारे भारत वर्ष में पहले लोग, हम लोग 9 वर्ष तक 10 वर्ष तक पैंट फैंट कुछ जरूरत नहीं, लड़कियां भी वैसे ही पैंट फैंट कुछ नहीं, लड़के लड़कियां 9 वर्ष तक। आजकल जहां बच्ची जन्मी और क्या कर दिया, लगा दिया, लोगों की बुरी नजरें है ना, इसलिए पहले ये सब जरूर हमने देखा है 9-9, 10-10 वर्ष के लड़के सब ऐसे ही लड़कियां घूम रही है बड़े प्यार के साथ, कोई जरूरत नहीं समझते थे। जैसा जैसा कलयुग बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये सब बढ़ता जा रहा है। तो वो छोटे से बच्चे पासी में कहीं रखा गया था गेहूं, और गेहूं को उन्होंने छोटी सी हथलुइयों से छोटा सा बच्चा उठा ला और उठा करके, और वहां से जहां से कुंजड़िन बोल रही थी फल बिक्रैनी उधर में चले और वहां जाकर के पहुंचे। तब तक वो सब दाने गिर गए थे और दो एक हो सकता है कि यहाँ पर किसी प्रकार से रुके हुए हैं बाकी सब, और उसकी टोकरी के पास में जा करके ऐसे कर दिया है, बोले जैसे हमको फल दो फल दो। और वो बेचारी तो देखते ही देखते एकदम रह गई, इतना सुंदर रूप, विश्व का सारा जितना रूप है सब कृष्ण में, इतना मधुर और बोली कैसे मीठी, बंसी भी ऐसी नहीं बोल सकती। हाँ एक की बोली उससे भी मधुर है, किसकी, राधा जी की, और वो और भी सुंदर हैं, जिसको देख करके ये सुंदर ये कृष्ण मनमोहन भी मुग्ध हो जाए। तो वो कृष्ण इतनी सुंदर इतनी बोली मीठी और उनका रूप देखते ही बस देखती रह गई, आंखें वहां पर बंद नहीं हुई, वो चाहती थी आंखों में भर करके हृदय में उतार लें, ये तो संभव नहीं था, किंतु हाँ एकदम उन्मत्त जैसी हो गई। अरे फल दो बार बार कृष्ण कह रहे हैं और वो केवल रूप देख रही है, रूप सुधा का रूप अमृत का वो पान कर रही। थोड़ी देर के बाद में जब होश आया तो कृष्ण की तरफ देखकर बोली, एक बार मैया कहते हमें तो और तब फल दूंगी और हमारी गोदी में एक बार बैठ जा, कृष्ण ने देखा ये तो बड़ा भारी शर्त लगाया, छोटा सा बच्चा इधर देख रहा है मैया की तरफ में, इधर जो कोई है तो नहीं, और झट एक मिनट के अंदर में उसकी गोदी में बैठ करके मैया एक बार कर करके मैया, और बस उठ करके खड़ा हुए, फल दो फल दो। इस रूप छटा ने और इस लीला ने एकदम देख करके वो कृष्ण को अपने हृदय में कर लिया और भूल गई अपने को। किसी प्रकार से दो एक फल उसके अंजलि में दिया, कितना आएगा दो एक, वो भरते भरते भर गई और वो पेट में ऐसे कर करके, क्योंकि हाथ में तो आएगा कितना, ऐसे कर करके मैया की तरफ एक तेजी के साथ में दौड़ते हुए एकदम मैया की गोदी में पहुंचे और मैया की गोदी में दे दिया। भैया देखा ये तो बड़ा सुगंधित फल, इतना सुगंधित, इसमें तो माधुर्य आ रहा है, सबको एक एक दिया और वो कमे नहीं, एक एक फल सबको दे रही है, वहां पर हजारों उनकी सखियां हैं, किंतु एक भी फल कमा नहीं, वैसा का वैसा ही रह गया। उन्होंने चखा, देखा जी इतना मधुर फल तो हमने कभी नहीं खाया, और उधर उसकी क्या दशा हुई। कृष्ण तो चले आए, वो बैठे की बैठी ही रह गई, उठी ही नहीं। बहुत देर जब हो गई तो किसी ने आकर, अरे तू जाएगी नहीं घर, आई है फिर बैठी, अब तो शाम होने को आई, अब तो घर जा। तो उठी, उठ करके किसी प्रकार से अपने टोकरी को सिर पर उठाया, उठा करके चली। जब लौट रही थी तो यमुना जी जब आई तो उसको ऐसे मालूम हुआ जैसे ये कुछ भार सा इसमें है, टोकरी को उठा करके नीचे रखा, देखा क्या, कपड़ा हटाया, देखा क्या, हीरा जवाहरातों से भरा हुआ है। जो भगवान के लिए इतना भी फल देगा भगवान क्या करेगा, हीरा जवाहरात तो की बात क्या, वैकुंठ की मणियां, वैकुंठ के मधुर चीजें उसमें लेकर के भर देगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। इसलिए कृष्ण ने देखा जी घर से तो आई होगी तो कुछ भावना करके आई होगी, बस उसकी टोकरी को एकदम भर दिया असरफी और हीरे और मोतियों से भर दिया। उसने क्या किया, अब मुझे इसकी क्या जरूरत, उठाया और लेकर के यमुना में, कहां गई कोई पता नहीं, क्या हुआ उसका, क्या हुआ होगा, एक बार ऐसा दर्शन करने से फिर वो जीवित नहीं रह सकता। कोई साधन जीवित में रहेगा तो प्रेम होने पर पागल होगा, इसलिए इस शरीर में प्रेम नहीं होगा। कौन शरीर में प्रेम होगा, जब उसके आत्मा का जो शरीर अत्यंत सुंदर है वो प्रकट होगा तो उसके द्वारा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश होगा। ऐसे नहीं होता, इस शरीर से नहीं होगा, इस शरीर से दर्शन भी नहीं होगा, इन आंखें नहीं देख सकती, जो आंखें अपनी आंख को भी नहीं देख सकती, पीठे में क्या है ये आंखें नहीं देख सकती, अंधकार में ये नहीं देख सकती, किसी रोशनी के माध्यम से वो देख सकती, इस आंखों में लाइट नहीं है, यदि कोई रोशनी ना हो तो वो नहीं देख सकती, किसी प्रकार का प्रकाश की सहायता से देखे तो ये भगवान का क्या दर्शन कर सकती है, इसलिए ये नहीं कर सकती। कौन आंखें देखेगी, प्रेमांजन छुरित विलोचने संत सदैव हृदय विलोक जंगश्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। प्रेम के नेत्र से उन्हें देखा जा सकता, अभी जिसको अंदर में प्रेम होगा वो देख सकता है। राम और कृष्ण कहीं गए नहीं है, हैं यही हृदय में ही है, सबके हृदय में है, जिसको प्रेम की आंखें होंगी वो उनको देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता है। तो उसका क्या हुआ होगा, वो तो बावरी हो गई। कृष्ण चिंतन करते 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 यदि उतना जैसी राक्षसी को जो माता का वेश बना करके आई और उसको माता की गति दे दी, इसके लिए क्या गति देंगे, है उनके पास कुछ देने के लिए, कुछ नहीं, इसको क्या गति देंगे, इसकी माता से भी तो अधिक गति चाहिए। यदि एक विष पिलाने वाली, माता का वेश बनाने वाली, ठग, लड़कों का मांस खाने वाली, रुधिर पीने वाली, रक्त पीने वाली, उसको भी ऐसे गति दे दी, इनके पास में अब कुछ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हमको चिंता हो रही है ये क्या देंगे उसके लिए, उसके लिए तो उनको ऋणी बनना पड़ेगा, और यदि कोई गोपी भाव से मातृभाव से उनको भजन करता है उसको क्या देंगे। इसलिए आप यदि मन ही मन में कृष्ण की मैया बन जाएं, कृष्ण के भैया बन जाएं, सखा बन जाएं, मन ही मन कोई गोपी बन करके उनकी सेवा करें तो क्या होगा, कृष्ण उसके ऋणी हो जाते हैं। कृष्ण की लीला इतनी मधुर है,
और तो गोपियों की तो बात ही क्या है, मैया यशोदा का कृष्ण को बांधना, ये सब क्या चीजें हैं, ये भागवत में। भागवत को हम समझते हैं कि 10 वर्ष 10,000 वर्ष तक भी पढ़ने से उसको समाप्त करना पड़ा। एक एक अक्षर में राधा जी का भाव, राधा जी का नाम और प्रेम रस भरा पड़ा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसलिए ऐसे अधिकारी व्यक्ति यदि हो, भजन करने वाले हो, उपलब्धि करने वाले हो, ऐसे मुखों से यदि सुना जाए तो यथार्थ में रामायण महाभागवत महाभारत रामायण का और भागवत का अर्थ समझा जाए। तुलसीदास के जो रामायण है उसके एक एक अक्षर में भागवत इत्यादि शास्त्रों का निचोड़ है। ऐसा कोई चौपाई नहीं है, ऐसी कोई चौपाई नहीं जिसमें राम नहीं है। अंधों को नहीं दिखता किंतु आंख वालों को वो दिखता सर्वत्र है। ऐसे भागवत में ऐसे कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें राधा जी का नाम, किंतु उल्लुओं को नहीं दिखाई पड़ता। उल्लू माने क्या, उल्लू या पेचा कहते हैं, रात में उनको नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता सूर्य रहने पर भी। तो जिनको भक्ति नहीं है ऐसे लोग भागवत को नहीं समझ सकते। आप लोग भगवान का नाम करेंगे और ऐसे यदि महात्मा कोई हो तो उनके मुख से सुनेंगे तो भागवत का तात्पर्य समझ में आएगा। ऐसी कथाएं भगवान के से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी कथाओं को सुन करके उनका चिंतन करने से ये जन्म मृत्यु का जो कष्ट है सदा के लिए दूर हो जाता है, इस पर पक्का विश्वास रखें, नहीं तो शास्त्र का ऐसा नहीं। आज यही तक रहे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो महामंत्र करोतु। ज्ञानं जनसरलकया चक्षुरुन्मीलितं येन